इशिका अभिमन्यु के साथ हॉस्पिटल से पार्टी वेन्यू पर जा रही थी, तभी कियारा ने उसे देख लिया था। जब से राघव ने इशिका के साथ बुरा बर्ताव किया था, तब से वो कियारा से बात नहीं कर रही थी। उससे बात करने के लिए ही कियारा पार्टी में जाना चाहती थी। जैसे ही कियारा ने इशिका को देखा, वो जल्दी से अपनी व्हीलचेयर को उसके पास ले जाने की जिद करने लगी। इससे पहले कि राघव गाड़ी के पास व्हीलचेयर ले जा पाता, अभिमन्यु की गाड़ी निकल गई थी। कियारा के साथ साथ उसकी एक झलक मिस्टर एंड मिसेस मित्तल ने भी देखी थी। मिस्टर मित्तल गाड़ी की तरफ देखते हुए बोले, कियारा सच कह रही है, शायद वो मिस सिंघानिया ही थी। हाँ, मैंने भी उन्हें देखा था, गाड़ी में वही बैठी थी, नैना ने जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर राघव थोड़ा हैरान हुआ। अभिमन्यु की गाड़ी में इशिका ही बैठ सकती थी, क्योंकि कल रात दोनों साथ में थे। आयशा कभी अभिमन्यु की गाड़ी में उसके साथ नहीं बैठने वाली थी। अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए राघव ने कियारा से पूछा, ये वही मिस सिंघानिया थी क्या जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? हाँ, कियारा ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया। फिर वो बोली, जल्दी से उनका पीछा करते हैं ना, मैं पार्टी में उनके साथ ही एंट्री लेना चाहती हूँ भाई। जरूर आयशा ही गाड़ी में होगी, राघव ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा। वो सब गाड़ी में बैठ गए थे और अभिमन्यु की गाड़ी का पीछा करने लगे थे। कुछ ही देर में अभिमन्यु की गाड़ी उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। कियारा ने अपना गुस्सा जताते हुए ड्राइवर से कहा, तुम कितना धीरे ड्राइव कर रहे हो, जल्दी चलो, वो गाड़ी हमसे आगे निकल गई है, मुझे मिस सिंघानिया से पार्टी में एंट्री लेने से पहले मिलना है। उसकी कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। कुछ ही देर में उन्हें अभिमन्यु की गाड़ी मिल गई थी, पर अफसोस से अभिमन्यु की गाड़ी वहां पहले से पार्क थी। इसका मतलब साफ था कि अभिमन्यु और इशिका गाड़ी से पहले ही निकल चुके थे। उन्हें वहां न देखकर कियारा का चेहरा उतर गया। राघव ने कियारा का कंधा सहलाकर कहा, कोई बात नहीं, वो इसी पार्टी में आई है तो तुम उनसे अंदर मिल देना। हाँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, कियारा ने जवाब दिया। वो होटल राजवंश एम्पायर का हिस्सा था, इस वजह से अभिमन्यु की गाड़ी बिना किसी सिक्योरिटी चेक के आगे गई थी। वहीं राघव की गाड़ी का सिक्योरिटी चेक होने लगा था। गाड़ी से बाहर निकलकर इशिका और अभिमन्यु अंदर की तरफ जा रहे थे। इशिका ने महसूस किया कि वो दोनों प्राइवेट लिफ्ट में थे और अभिमन्यु उसे पार्टी में ले जाने के बजाय सूट के अंदर लेकर जा रहा था। इशिका ऊपर पहुंचकर रास्ते में ही रुक गई। अभिमन्यु ने उसकी तरफ मुड़कर देखकर कहा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? हम कहाँ जा रहे हैं? इशिका ने हिचकिचाते हुए पूछा। सूट में, अभिमन्यु ने सीधे सीधे कम शब्दों में जवाब दिया। अचानक इशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, और वो क्यों? उनके साथ में हमेशा की तरह पृथ्वी भी था। उसने जवाब देते हुए कहा, हॉस्पिटल में आपके चेंज करने और मेकअप के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाता, इसलिए सूट में सारे इंतजाम किए गए हैं। आपने शायद जल्दबाजी में नोटिस नहीं किया, लेकिन आपने पार्टी के हिसाब से ड्रेस नहीं पहना है। पृथ्वी के समझाने पर इशिका को सब समझ आया कि अनजाने में वो अभिमन्यु को गलत समझ रही थी। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, समझ गई। उसने कुछ ज्यादा ही आगे का सोच लिया था। अभिमन्यु को महसूस हुआ कि इशिका क्या सोच रही है। उसे एहसास होते ही उसके चेहरे पर हल्की न दिखने वाली स्माइल आ गई। वहीं इशिका के गाल भी लाल होने लगे थे। वो लोग वापस आगे की तरफ बढ़ने लगे। इशिका ने अपने मन में कहा, ये मैं क्या सोच रही हूँ, हम दोनों का तो डिवोर्स होने वाला है, और फिर मैंने न जाने क्यों इतना आगे का सोचा। पता नहीं मिस्टर राजवंश मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ओह, मैं भी ना कई बार कुछ ज्यादा ही सोचने लगती हूँ। पृथ्वी ने इशिका के चेहरे की तरफ देखा और उसे परेशान करने के लिए कहा, वैसे मिस सिंघानिया, आपको क्या लगा था कि सर आपको सूट में क्यों लेकर जा रहे हैं? इशिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। उसके गाल और भी ज्यादा लाल होने लगे थे। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए एक पल के लिए इशिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अभिमन्यु ने उसे अनकंफर्टेबल होते हुए देखा तो उसने बातचीत का टॉपिक बदलते हुए कहा, मेकअप आर्टिस्ट आ गई है ना, तुमने डिजाइनर को बोल दिया ना कि हमें किस टाइप के कपड़े चाहिए? हाँ, वो पहले से ही तैयार है। कपड़ों के मामले में हमें मिस सिंघानिया की स्पेसिफिक चॉइस का पता नहीं था, इसलिए मैंने डिजाइनर को उनके बेस्ट कलेक्शन लाने को कहा है, वो उनमें से सेलेक्टर लेगी, पृथ्वी ने जवाब दिया। इशिका ने राहत की सांस ली, क्योंकि अभिमन्यु ने बातचीत का रुख बदल दिया था। कुछ ही देर में वो प्रेसिडेंशियल सूट में पहुंच चुके थे। हमेशा की तरह पृथ्वी कमरे के बाहर रुका था, जबकि अभिमन्यु और इशिका अंदर गए थे। अंदर जाते ही अभिमन्यु काउच पर जाकर बैठ गया। हालांकि वो अपने मोबाइल में लगा था, लेकिन उसका ध्यान इशिका पर ही था, क्योंकि उसके पास ही एक स्टैंड पर काफी सारी ड्रेस लगी हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट ने इशिका से कहा, मैम, आप इसमें से एक ड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि उस हिसाब से मैं बाकी का मेकअप और ज्वेलरी डिसाइड कर सकूं। इशिका ने कपड़ों की तरफ देखा तो वहां एक से बढ़कर एक महंगी डिजाइनर ड्रेस रखी हुई थी। जब बचपन में वो सिंघानिया फैमिली के साथ रहती थी, तब उसे किसी भी पार्टी में नहीं जाने दिया जाता था। घर छोड़ने के बाद वो काम करने और पैसे कमाने में लग गई, तो इस तरह की पार्टी वगैरह में नहीं गई। इशिका को इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि पार्टी के हिसाब से किस तरह के कपड़े पहने जाएं। अभी भी उसने अपनी तरफ से पार्टी के हिसाब से एक व्हाइट कलर का नॉर्मल सा घुटनों तक का स्लीवलेस फ्रॉक पहना हुआ था। इशिका ने गहरी सांस ली और मेकअप आर्टिस्ट से कहा, क्या आप मुझे कुछ सजेशन दे सकती हैं? मेकअप आर्टिस्ट ने सभी ड्रेसेस को देखा और फिर एक ड्रेस निकालते हुए इशिका से कहा, ये ड्रेस आप पर परफेक्टली सूट करेगा। आपका फिगर अच्छा है तो इस ड्रेस में काफी अच्छे से उभर कर भी आएगा। आप इसमें काफी अट्रैक्टिव लगेंगी, एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, फिर मैं यही पहन लेती हूँ, इशिका ने सादगी से जवाब दिया। इशिका ने मेकअप आर्टिस्ट के हाथ से ड्रेस ली और उसे लेकर सूट के बेडरूम में चली गई। वो लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद में इशिका ड्रेस पहनकर वापस आई। दरवाजा खोलने की आवाज के साथ ही अभिमन्यु की नजर उसकी तरफ चली गई। उसे देखते ही अभिमन्यु तो जैसे पलके झपकाना भूल गया था। वो इशिका को लगातार देख रहा था। हालांकि मेकअप आर्टिस्ट ने उसके अच्छे फिगर पर समीक्षा किया था, तब अभिमन्यु ने इतना ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी इशिका ज्यादातर ढीले ढाले कपड़े पहनती थी। हमेशा से अलग आज उसने मेकअप आर्टिस्ट का सिलेक्ट किया हुआ ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था। ऊपर से शोल्डरलेस होने की वजह से उसकी क्लीवरेज शो हो रही थी, तो वहीं पीछे से वो पूरी तरह बैकलेस था। मेकअप आर्टिस्ट ने बिल्कुल सही कहा था, उस ड्रेस में उसका फिगर काफी अच्छे से निखर कर आया था। अभिमन्यु ने उसे देखकर गहरी सांस ली। उसे एहसास था कि उसे इस तरह इशिका को लगातार नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसकी नजरें गुस्ताखी करने से बाज नहीं आ रही थी। इशिका ने महसूस किया अभिमन्यु उसी को देख रहा है, तो उसने अपनी नजरें झुका ली। उसके गाल लाल हो रहे थे, उसने पहली बार इस तरह की ड्रेस पहनी थी। जल्दी इशिका ने खुद को नॉर्मल किया और अभिमन्यु की तरफ देख कर पूछा, मिस्टर राजवंश, ये ठीक लग रही है क्या मेरे ऊपर? हाँ ठीक है, अभिमन्यु ने जवाब में कहा। खुद को नॉर्मल करने के लिए अभिमन्यु ने पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने लगा। इशिका अभिमन्यु के पास ही खड़ी थी। जैसे ही वो खुद को आईने में देखने के लिए बढ़ने लगी, अचानक उसका पैरों का बैलेंस बिगड़ गया था, क्योंकि उसने हील्स पहनी हुई थी। हड़बड़ाहट में इशिका गिरने वाली थी कि अभिमन्यु ने जल्दी से उठकर उसे कमर से पकड़कर थाम लिया था। संभल कर मिस सिंघानिया, अभिमन्यु ने कहा।
इशिका और अभिमन्यु ने काफी मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया था, लेकिन एक दूसरे की करीबी की वजह से दोनों फिर से हड़बड़ा गए थे। इशिका की ड्रेस बैकलेस थी, ऊपर से अभिमन्यु का हाथ डायरेक्ट उसकी बैक को छू रहा था। इशिका जल्दी से अभिमन्यु से दूर हुई और हील्स निकालते हुए बोली, ये हाई हील्स मुझसे हैंडल नहीं हो रहे, मैं कंफर्टेबल हील पहनना पसंद करूंगी। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी आपकी हाइट ठीक ठाक है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप इतनी ऊंची हील्स ना भी पहने तो, मेकअप आर्टिस्ट ने जवाब दिया। अचानक उसने अभिमन्यु और इशिका की तरफ देखकर कहा, मैंने पहले इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप दोनों की ड्रेस का कलर बिल्कुल एक जैसा ब्लैक है। काफी परफेक्ट कपल लग रहे हैं आप दोनों, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। इशिका ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि अभिमन्यु कुछ बोलेगा, लेकिन वो चुपचाप बाहर चला गया था ताकि इशिका आराम से तैयार हो सके। वैसे भी अगर वो कमरे के अंदर रुकता और इसी तरह इशिका को देखता रहता, तो न जाने वो उसके बारे में वो क्या सोचती। अचानक इशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वो अभिमन्यु में आ रहे इस चेंज को महसूस कर सकती थी। ये चेंज अगर पहले आता तो शायद वो अभिमन्यु को रोकती, लेकिन अब अभिमन्यु का उसके केयर करना उसे दिल ही दिल में बहुत अच्छा लगता था। कुछ ही देर में मेकअप आर्टिस्ट ने इशिका को तैयार कर दिया था। उसने बिल्कुल मिनिमल मेकअप करवाया था। इशिका ने ज्वेलरी के नाम पर डायमंड स्टड्स और हाथ में सिर्फ ब्रेसलेट पहना हुआ था। तैयार होने के बाद इशिका और अभिमन्यु दोनों एक साथ नीचे गैदरिंग में जाने के लिए निकले। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में कियारा व्हीलचेयर पर बैठकर पेस्ट्री खा रही थी। उसके पास में ही राघव खड़ा था, जिसके हाथ में वाइन का ग्लास था। कियारा ने इधर उधर देखते हुए कहा, मिस सिंघानिया अब तक आई क्यों नहीं है, मैं कब से उन्हें देख रही हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने महसूस किया कि एंट्रेंस पर थोड़ा शोर होने लगा था। इशिका और अभिमन्यु पार्टी के अंदर आ गए थे। इशिका और अभिमन्यु ने पार्टी के अंदर एंट्री ली तो कंपनी में काम करने वाले और दूसरे बिजनेसमैन उनके पास आने लगे थे। अभिमन्यु उनसे हेलो हाई कर रहा था। उसने महसूस किया कि इशिका उससे दूर चली गई है। अभिमन्यु की नज़र इशिका की तरफ गई। वो सबसे अलग स्नैक्स एरिया में खड़ी होकर कुछ खा रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर वही न दिखने वाली छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। इशिका ने यह सब लाइमलाइट में न आने के लिए किया था, तो वहीं अभिमन्यु की नज़रें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही लम्हा आ रहा था जब उसने एक बार फिर इशिका को कमर से पकड़कर गिरने से बचाया था। अभिमन्यु का ध्यान इशिका की तरफ था, तभी किसी ने तेज आवाज में कहा, मिस्टर राजवंश, आप इस पार्टी में मिसेज राजवंश को क्यों नहीं लेकर आए? आखिर हम सब उनकी एक झलक देखना तो डिजर्व करते ही हैं। हमें भी तो पता चले कि वो कौन लकी लड़की है जिसकी शादी आपके साथ हुई है। अभिमन्यु को अपनी पत्नी के बारे में बात करना पसंद नहीं था। ये जानते हुए किसी दूसरे आदमी ने उसे इशारे से चुप कराया। जिसने ये सवाल पूछा था वो अभी वहां सेटल हुआ था। हमेशा अभिमन्यु को उसकी पत्नी के बारे में पूछे जाने पर वो रूखे तरीके से जवाब देता था, लेकिन आज उसने सामान्य तरीके से जवाब देते हुए कहा, जरूर, जल्द ही वो लम्हा आपके सामने आएगा। सब लोग हैरान रह गए। अभिमन्यु ने पहली बार अपनी पत्नी के बारे में बात की थी और उन सबसे मिलवाने के लिए भी कहा था। वहीं कियारा इधर उधर देख रही थी। उसे लगा कि इशिका अभिमन्यु के साथ पार्टी में आई होगी। उसे अभिमन्यु तो दिखाई दे गया था, लेकिन इशिका कहीं नहीं दिखी थी। कियारा की नजरें इधर उधर देखते हुए इशिका को ढूंढ रही थी। तभी राघव उसके पास आकर बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या? कियारा ने सिर हिलाकर पूछा। तुम्हें वो लड़की याद है? अरे वो पहले वाली मिस सिंघानिया जिससे तुमने हेल्प मांगी थी और उसने तुम्हारी हेल्प करने से इनकार कर दिया था। उसने तुम्हारी सबके सामने बहुत इंसल्ट भी की थी। राघव वहां उस आयशा के बारे में पूछ रहा था। आयशा की याद आते ही कियारा का चेहरा उतर गया था। उसने नजरें झुकाकर कहा, हाँ मुझे वो लड़की याद है, उसे मैं कभी भूल भी नहीं सकती हूँ। आज तक इतना बुरा मुझे किसी ने नहीं बोला जितना उसने कहा था। मैंने उससे तुम्हारे लिए बदला ले लिया है, राघव ने मुस्कुराकर कहा। क्या किया आपने? कियारा ने जल्दी से पूछा। उसकी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से ही जाता था। मैंने रॉ मटेरियल भेजने से मना कर दिया है और उसे इतनी आसानी से रॉ मटेरियल मिलने वाला भी नहीं है, राघव ने काफी प्राउडली बताया। बिजनेस वर्ल्ड के लोग इतने ही क्रूअल होते थे। बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। हालांकि आयशा ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, फिर भी कियारा ने कहा, आपने बहुत बुरा किया। हो सकता है वो उस वक्त परेशान होगी, इसलिए उसने मुझे वो सब कहा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। जो भी हो, मेरे दिल को तसल्ली मिल गई है। अब वो भी किसी के साथ बदतमीजी से बात करने से पहले दो बार जरूर सोचेगी, राघव ने सख्ती से जवाब दिया। कियारा को मन ही मन आयशा के लिए बुरा लग रहा था, जबकि वो नहीं जानती थी कि वो जिसके लिए बुरा मान रही है वो आयशा नहीं बल्कि ऐशिका थी, जिसके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बदले में उसे सजा ही मिली थी। फिलहाल के लिए इतना ही। कल के दिन के तीनों पार्ट में से किसी के अंदर ऐशिका की सच्चाई सामने आ जाएगी, तो पार्ट स्किप मत कीजिएगा। कल मिलते हैं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।